मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 12 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं ज्योति कर्ष का जो भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने 15 से 29 मार्च के बीच एकेडमी की होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे नागरिकता संशोधन विधेयक जो 2019 पारित किया गया है उसके संदर्भ में अनुच्छेद 14 में जो तार्किक वर्गीकरण की बात कही गई है उस पर बात करूंगा। लेकिन आइए इससे पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर कल की है वो तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का पारित किया जाना है ही, जो इससे पहले लोकसभा में पारित किया गया था और कल राज्यसभा ने भी उसे पारित कर दिया, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा इसके बाद करेंगे। पहले दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मालूम पड़ रही है वह है रीसेट 2BR1 उपग्रह का छोड़ा जाना। ये क्या है? देखिए, अक्सर मेरा यह अनुभव रहा है कि जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह छोड़े जाते हैं तो प्री एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो अब आप उसके उत्तर कैसे दे पाएंगे? देखिए, सीधे सीधे अगर हम कहें कि यह उपग्रह है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे जब हम आंसर देखेंगे, यानी कि जो विकल्प देखेंगे। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ लें तो वो जो भ्रम की स्थिति है वो बहुत न्यूनतम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो मैं बहुत सरल शब्दों में कुछ बातें इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद इससे दिमाग में इस आप कह लीजिए कि उपग्रह के बारे में तस्वीरें जो बननी चाहिए वो बहुत साफ तरीके से बन सके। पहली बात तो देखिए, समझने के लिए आप ये कह लीजिए कि यह एक ऐसा उपग्रह है जो अंधेरे में भी साफ साफ तस्वीरें ले सकेगा। सबसे बड़ा मुझे इसकी सबसे बड़ी विशेषता मालूम पड़ती है, जो अंधेरे में भी बहुत साफ साफ चित्र ले सकेगा। यूं कह लीजिए कि इससे पहले भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, है ना, एयर स्ट्राइक किया था, उसकी तस्वीरें साफ नहीं आई थी, कुछ समय के बाद वो तस्वीरें प्रस्तुत की गई थी। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी नौबत आती है तो अब कोई संकट नहीं होगा, बाकायदे ये जो हमारा उपग्रह है साफ साफ तस्वीरें ले लेगा, चाहे फिर वो रात का घना अंधेरा हो या बादल छाए हुए हों, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो उपग्रह, यह रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह। इसमें क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, कभी कभी साइंस के तहत उसको पूछ लिया जाता है। इसमें जो है एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है, और ये क्या है कि इसका जो जीवन अवधि है वो लगभग 5 साल की है, और ये 5 साल तक जो हमारे बॉर्डर के जो एरियाज हैं उनमें जो घुसपैठिए की गतिविधियां होती हैं, जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, जो तस्करी वगैरह के मामले होते हैं, उन सब पर बड़ी आराम से निगरानी रख सकेगा। और इसकी खासियत यह है कि अगर दो कोई चीजें पृथ्वी पर हों जिनकी दूरी 0.35 मीटर हो तो बकायदे उसका जो रेजोल्यूशन का जो कैमरा है वो तस्वीरें ले लेगा, ये इसकी खासियत है। 35 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चीजों की अलग अलग और यह स्पष्ट पहचान कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि अब इसके आसमान में चले जाने के बाद जो भारत की जो रडार इमेजिंग क्षमता है वो कितनी गुना अधिक बढ़ गई है, और डेफिनेटली इससे हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं इनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने इसके बारे में दी है। एक और छोटी सी खबर है मित्रों की, जो 2020 में आपको मालूम है कि जापान में ओलंपिक होने हैं, इस ओलंपिक में अब रूस भाग नहीं ले सकेगा क्योंकि उसे डोपिंग टेस्ट में फेल कर दिया गया है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि डोपिंग टेस्ट करने की जो एजेंसी है, बेहतर होगा कि अगर आप इसका नाम याद कर लें, क्योंकि देखिए हम तो एक तो सीधे तरीके से बात कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम थोड़ी सी उसमें और कुछ ऐड कर दें तो फिर उसका वजन बढ़ जाता है, और ये एजेंसी आपके हमेशा काम आने वाली है। यह है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WADA। तो 4 सालों तक अब रूस भाग नहीं ले सकेगा। जाहिर है कि अभी ये 2020 के जापान ओलंपिक में भाग नहीं ले सकेगा, और फिर 2022 में जो विंटर ओलंपिक होने, ये बीजिंग में होना है, विंटर ओलंपिक चीन में होने हैं, इसमें भी यह भाग नहीं ले सकेगा। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें यह महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के करंट कंटेंट के तहत आपको कारोबार में सुगमता के रास्ते, ये आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है जो हिंदू में छपा था। आपको मालूम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने एक अच्छी सफलता हासिल की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना ही पर्याप्त है? कुछ नियम कानून बना दिए गए हैं और हमें सफलता हासिल हो गई है और हम थोड़े से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैं आज आपको दैनिक भास्कर का एक संपादकीय प्रोवाइड कर रहा हूं, नकारात्मक कानून व्यवस्था का आर्थिक विकास पर होगा असर। देखिए, नियम एक तरफ है, लेकिन अभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के विदेशी मीडिया में भारत की छवि काफी नकारात्मक बनी है। जैसे अभी हैदराबाद दुष्कर्म का मामला देख लीजिए, अभी उन्नाव के दुष्कर्म का मामला देख लीजिए, इसके बाद दिल्ली में अभी जो आगजनी की घटना हुई, तो विदेशों में कुछ ऐसी छवि बन रही है और अखबारों में और मीडिया में बहुत ही बातें आ रही हैं कि भारत में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है, वहां कानून का पालन करना कोई अनिवार्यता नहीं है, लोग कानून का पालन नहीं करते, जो मर्जी हो अपनी तरफ से वो कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सोच करके देखिए कि जो विदेश के उद्योगपति हैं वो भारत आकर के उद्योग लगाना क्यों चाहेंगे, जहां कानून का कोई अर्थ ही न रह जाए। तो स्वाभाविक है कि इससे, चाहे हम अपने नियम कानून कितने भी शिथिल क्यों न कर दें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, लेकिन बाहर से जो निवेश देश में आना चाहिए वह नहीं आएगा। तो आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो उसे आप व्यापक रूप में देखने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं आज आपको एक दैनिक भास्कर का एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा हूं और साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक एडिटोरियल इसी के ऊपर है। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा और आपको करंट कंटेंट के तहत जो आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, इन तीनों को मिलाकर के आप एक अच्छा सा नोट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मुझे यह थोड़ा इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करें थोड़ी सी आज के मुख्य विषय पर। जैसा कि मैंने कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया है। राज्यसभा से पारित होने के बारे में थोड़ा सा अंदेशा था, लेकिन काफी वोटों के अंतर से वहां भी यह पारित हो गया। तो अब राष्ट्रपति जी के जैसे इस पर हस्ताक्षर होंगे, यह अधिनियम बन जाएगा। देखिए, इसकी जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, और मतलब रिपीट कर रहा हूं मैं भले ही, यहां और कहने का मेरा मतलब है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहली बात कि इसमें तीन देशों के नाम हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान के साथ तो हमारी सीमा थोड़ी सी ही मिलती है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो बहुत सीमा मिलती है। ठीक, ये तीन देश ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। इन तीन देशों से जो शरणार्थी आए हैं, यह केवल उनके लिए है, राइट। दूसरा इसका तथ्य जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वहां से कौन लोग आए हैं। वे लोग आए हैं जो धार्मिक रूप से वहां प्रताड़ित हो रहे थे, उस प्रताड़ना के शिकार थे, और उस प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आए हैं। ठीक है, तो यहां शब्द बहुत स्पष्ट है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित, क्योंकि ये जो तीनों देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मूलतः धार्मिक राष्ट्र ही हैं, है ना। इन्होंने अपने आप को घोषित धार्मिक राष्ट्र कर रखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो वहां हो ये रहा है कि जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको कुछ प्रताड़ित किया जाता होगा, चाहे राजनीति के जरिए, चाहे समाज के जरिए, कानून के जरिए, जिस तरीके से भी। तो वहां वो अपने रहना उनके लिए शायद दुभर हो जाता होगा, तो चूंकि भारत की सीमा से लगा हुआ है तो वो भारत आ जाते हैं। तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित। यहां एक शब्द और भी यूज किया गया, वो है अल्पसंख्यक, यानी कि ये धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उन देशों में वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वो धार्मिक राष्ट्र है तो बहुसंख्यक वहां के लोग हैं जो मुस्लिम हैं, तो ये अल्पसंख्यक हैं और ये भारत में आए हैं। अब इनको नागरिकता देने के बारे में यह संशोधन किया गया है, ये आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। न्यूज में आपने एक बात सुनी होगी, हमारे गृह मंत्री जी जब अपना बयान दे रहे थे, क्योंकि कुछ सदस्यों ने, और जो स्वाभाविक भी है, अनुच्छेद 14 का मामला उठाया, जो हमारे मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए हैं, उसमें जो समानता का अधिकार है उसको लेकर के प्रश्न किए गए, और स्वाभाविक है कि प्रश्न किए भी जाने चाहिए, डेमोक्रेसी यही तो है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझसे इस अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए ये पूछा है कि सर फिर हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है। केवल इसी तथ्य को मैं आज यहाँ मुख्य विषय के तहत स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मित्रों, जब आप पुस्तक में पढ़ेंगे समानता का अधिकार, तो आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, कि ये जो समानता का अधिकार है वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, भारत के राज्य क्षेत्र, वो भारत की सीमाओं में रह रहा है, चाहे फिर वो भारत का नागरिक हो या न हो। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, यहां तक कि अगर वो विदेशी भी है, उससे भी यह अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार प्राप्त है। तो अब मान लीजिए कि हमारे यहां बहुत पहले से मुस्लिम आ गए हैं और उन्हें इस नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत नागरिकता नहीं दी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो उनके खिलाफ किया गया एक तरह से अन्याय है, क्योंकि हम उन्हें नागरिक, ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत, उन्हें नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, जिसे हम सब सच पूछे तो इग्नोर कर देते हैं, और हमारी देखिए जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अभी हमारे गृह मंत्री जी ने जो बार बार अपने उत्तर में, अपने संसद के सामने जब वो बोल रहे थे बातचीत में, शब्द का एक जो प्रयोग किया है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि तार्किक वर्गीकरण, डेफिनेटली अब ये जो अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ जो तार्किक वर्गीकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो दोस्तों, ये तार्किक वर्गीकरण क्या है? दरअसल ये जो तार्किक वर्गीकरण है, ये बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिया है। उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धांत दिया और ये कहा कि समानता के सिद्धांत के बारे में जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि भेदभाव हो रहा है या ये तार्किक वर्गीकरण है, तो दो बातें देखी जानी चाहिए। देखिए, अभी हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, जो उन तीन देशों से आए हुए मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, ये तार्किक वर्गीकरण है। तो तार्किक वर्गीकरण के लिए क्या दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई हुई है, दो बातें जरूरी है। पहला तो यह कि जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बहुत आराम से समझा जा सके कि इस प्रक्रिया के तहत, यानी कि जो तार्किक वर्गीकरण किया जा रहा है, किसे सुविधा पाने वालों की श्रेणी में रखा जाएगा और किसे उससे बाहर रखा जाएगा, बहुत स्पष्ट हो। तो अब आप देखिए कि पहली शर्त अभी जो विधेयक आया है वो पूरी करता है, क्योंकि बकायदे उसमें बता दिया गया है कि ये तीन देश हैं और जो इससे लाभ मिलेगा वो 6 पूजा पद्धतियों के मतावलंबियों को मिलेगा, है ना, जिसमें हम हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबको देखते हैं, 6 वर्ग को रखा गया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों आधार स्पष्ट हैं यहां पर, है ना, कि तीन देश और उन तीन देशों से आए हुए किन लोगों को, तो कुछ भी अस्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी शर्त है वो है कि वर्गीकरण के आधार पर जो उद्देश्य बनाए गए हैं वो तार्किक हों, यानी कि जो आपका उद्देश्य है वो ऐसा नहीं कि वो इमोशनल हो या गोलमोल वाला हो, वो लॉजिकली बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। और जब तर्क की हम कसौटी देखेंगे तो न्यायपूर्ण होना चाहिए। अब आप देखिए कि अब यहां हम क्या देखते हैं कि जो अभी आया है वो ये आया है कि पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये जो तीन देश हैं इनमें जो 6 पूजा पद्धति के लोग बताए गए हैं, जिसमें आप कह लीजिए कि लाखों की संख्या में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं, इनको प्रताड़ित किया गया है, और प्रताड़ित करने के प्रमाण के तौर पर यह देखा जा रहा है कि वहां इन लोगों की संख्या निरंतर कम होती चली जा रही है, तो ये क्यों छोड़ करके आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, वो वहां रहना नहीं चाह रहे हैं, वहां से छोड़ करके वो भारत में आ रहे हैं। तो भारत अब उन्हें नागरिकता देकर उनके साथ न्याय करना चाह रहा है। अब आप देखिए कि यहां भी वो बहुत ही लॉजिकल है और इसे प्रमाणित किया जा सकता है कि इन तीन देशों में इन 6 मतावलंबियों की संख्या निरंतर कम होती चली गई है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये जो अनुच्छेद 14 के तहत जो तार्किक वर्गीकरण का आधार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, यह विधेयक इन दोनों आधारों को पूरा करता है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। देखते हैं इसको लेकर के बहुत से अभी आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, तब हम इस पर और चर्चा करेंगे। और आज भी मैं आपको कुछ आर्टिकल्स ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब उन्हें देख लेंगे। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सत्या पांडे, अंकित कुमार, विजय रतुड़ी उत्तराखंड से, तन्मय कश्यप मुजफ्फरपुर बिहार से, मयंक त्रिवेदी, हेतराम प्रजापत जयपुर से, संतोष पटेल, प्रीति शर्मा, जयेंद्र सिंह भट्टी जूनागढ़ गुजरात से, निहारिका यादव और सागर काठात अजमेर राजस्थान से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।